आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के सदस्यों के साथ की बैठक। केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 41% से बढ़ाकर 50% करने की उठाई मांग। केंद्र सरकार ने वर्ष 2027 में दो चरणों में जनगणना कराने का लिया निर्णय, साथ में कराई जाएगी जाति गणना। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर कल होगी राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा, मुख्यमंत्री आयोजन में होंगे शामिल। और राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में बारिश ने लोगों को गर्मी से दिलाई राहत। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा बूंदाबांदी का सिलसिला। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में श्री योगी ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और राज्य सरकार की मांगों को लेकर आयोग को एक मांग पत्र भी सौंपा है। इसमें केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी को 41% से बढ़ाकर 50% करने की मांग की गई है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सरकार ने विशेष विकास योजनाओं के लिए स्पेशल फंड DDA दिए जाने की मांग भी उठाई है।
उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से आज प्रदेश के लिए जो मांग की है वो खास तौर से सारे स्टेट्स के लिए, जो अभी तक 41% शेयर मिलता है उसके स्थान पर 50% मिलना चाहिए, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को केंद्रीय करों में किसी भी हालत में हमें 20% से कम न मिले, यही हमारी मांग।
केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया ने प्रदेश की प्रमुख मांगों के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि राज्य ने इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया 45%, भौगोलिक क्षेत्रफल 15% से घटाकर 10%, जनसंख्या 15% से बढ़ाकर 22.5%, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन 12.5% से घटाकर 7.5%, वन 10% से घटाकर 5% करने समेत अन्य मांगे आयोग के समक्ष रखी हैं। डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया ने बताया कि बैठक के दौरान प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास और सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा पेश किया, जिसकी आयोग ने सराहना की।
मैंने भी यूपी के विषय में पढ़ा है, बहुत सारे रिफॉर्म, अच्छे अच्छे रिफॉर्म यूपी ने किए हैं, कुछ जो चल रहे हैं और जो किए जा सकते हैं। अभी जैसे यूपी ने एक निर्माण एक्ट करके पास किया है, अभी उसका असर अगले 4-5 साल में आएगा, पर मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा कदम है जो दूसरे राज्यों को भी उठाना चाहिए।
केंद्र सरकार ने वर्ष 2027 में दो चरणों में जनगणना कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जाति गणना भी की जाएगी। जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी। पिछली जनगणना वर्ष 2011 में दो चरणों में की गई थी। पहले चरण में घरों की सूची बनाना और दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना की गई थी। वर्ष 2021 की जनगणना भी इसी तरह दो चरणों में कराने का प्रस्ताव है। वर्ष 2021 की जनगणना के पहले चरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देश भर में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना का काम स्थगित कर दिया गया था। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन आज धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में राजा राम दरबार और अन्य मंदिरों की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य आयोजन कल होगा। पेश है एक रिपोर्ट।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन आज राम दरबार, अन्न मंदिरों और यज्ञशाला में देवताओं का पूजन, हवन, देव स्नान, प्रसाद स्नान, शिखर स्नान आदि संपन्न किया गया, जिसमें 1975 मंत्रों के साथ अग्नि देवता को आहुति दी गई। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान काशी के विद्वान पंडित जयप्रकाश के नेतृत्व में 101 वैदिक आचार्य करवा रहे हैं। मुख्य प्राण प्रतिष्ठा कल अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11 बजे से होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने लोगों से अपील की है कि प्राण प्रतिष्ठा सार्वजनिक आयोजन नहीं है, इसलिए इसमें शामिल होने के लिए लोग अयोध्या ना आए। हालांकि रामलला के दर्शन करने वाले लोग सामान्य रूप से दर्शन कर सकते हैं। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
प्रदेश में विकसित कृषि संकल्प अभियान में अब तक करीब 7 लाख से अधिक किसान शामिल हो चुके हैं। इसी क्रम में बांदा के बिगहना गांव में आज कृषि विशेषज्ञों ने किसानों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में मौजूद सहायक नोडल अधिकारी रामानंद साहू ने बताया कि इस अभियान के तहत एक दिन में 3 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
कृषि संकल्पित विकास योजना के अंतर्गत योजना चलाई जा रही है, जिसमें आज केवीके से साइंटिस्ट और हमारे कुलपति महोदय भी इस ग्राम में उपस्थित हुए, जिसमें योजनाओं के बारे में बड़े विस्तार से हमारे किसान भाइयों को चर्चा की और बताया कि क्या क्या लाभ किस किस विभाग से आप लोग मिल सकता है और इस पे आप लीजिए।
कार्यक्रम में मौजूद किसान भारत सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस अभियान के तहत मिल रही जानकारी से आने वाले दिनों में उनकी फसल बेहतर होगी और आमदनी में बढ़ोतरी होगी।
कृषि के बारे में, पैदावार दोगुना करने के बारे में काफ़ी जानकारियां दी, पशुपालन के बारे में, उद्योग विभाग के बारे में क्या करना है उसके बारे में बहुत सी जानकारियां दी, जिससे आगे चल के हमें भविष्य में उनसे लाभ होने की उम्मीद है।
यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। विपक्षी पार्टियों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि संसद का मॉनसून सत्र 12 अगस्त को संपन्न होगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख का संदेश लेकर दुनिया भर के देशों में गए 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों में से 4 सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो गणराज्य और सियरा लियोन के दौरे के बाद आज सुबह भारत लौटा। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा ने कहा कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का संदेश यह था कि पूरा देश आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट है।
ऑल पार्टी डेलीगेशन जाने से सरकार जो भेजी उसका एक बड़ा मैसेज सब जगह लोगों को ये जरूर आश्चर्य लगा कि पूरा देश इस इशू पर एक साथ टेररिज्म के खिलाफ और सारे पार्टी के लोग एक वॉइस में बात कर रहे हैं।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उत्सव के बीच सशस्त्र बलों के सम्मान में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम परमवीर चक्र से सम्मानित नायक जदुनाथ सिंह को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था। एक रिपोर्ट।
1916 में उत्तर प्रदेश में जन्मे पहली बटालियन राजपूत रेजिमेंट के नायक जदुनाथ सिंह जम्मू और कश्मीर में नौशेरा के नजदीक तैनधार में चौकी कमांडर थे। 1947-48 के भारत पाक युद्ध के दौरान 6 फरवरी 1948 की धुंध भरी सुबह में दुश्मन की सेना ने तैनधार पर बड़े पैमाने पर एक के बाद एक हमला करना शुरू किया। संख्या में कम होने के बावजूद नायक जदुनाथ सिंह ने दुश्मन के इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। तीसरे हमले के अंत तक चौकी पर मौजूद 27 जवानों में से 24 जवान शहीद या घायल हो चुके थे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एक स्टेन गन के साथ उन्होंने अकेले ही शत्रुओं का सामना किया, जिससे डरकर हमलावर भाग खड़े हुए। अदम्य साहस और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए। इस उत्कृष्ट शौर्य और सर्वोच्च बलिदान के लिए नायक जदुनाथ सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलेन अख्तर, आकाश समाचार, दिल्ली।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि प्रदेश के सभी जिला अस्पताल और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में योग दिवस पर आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में आज मौसम में बदलाव देखने को मिला। राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के सदस्यों के साथ की बैठक। केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 41% से बढ़ाकर 50% करने की उठाई मांग। केंद्र सरकार ने वर्ष 2027 में दो चरणों में जनगणना कराने का लिया निर्णय। साथ में कराई जाएगी जाति गणना। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर कल होगी राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। मुख्यमंत्री आयोजन में होंगे शामिल। और राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में बारिश ने लोगों को गर्मी से दिलाई राहत। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा बूंदाबांदी का सिलसिला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।